शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 21। गिबियोन वासियों का बदला। दाविद के शासनकाल में 3 साल का काल पड़ा, लगातार 3 वर्ष के लिए। दाविद ने यहावे से इसका कारण जानने का प्रयास किया। यहावे ने उन्हें उत्तर दिया, शाऊल और उसके परिवार पर लहू का दोष है, उसने गिबियोन वासियों की हत्या की थी। इसलिए राजा ने बातचीत के लिए गिबियोन वासियों को आमंत्रित किया। एक सच यह था कि गिबियोन वासी इसराइल के वंशज नहीं बल्कि अमोरियों के बचे हुए भाग थे। इसराइलियों ने उन्हें सुरक्षा का वचन दे दिया था। शाऊल ने अपने उत्साह में भरकर इसराइल और यहूदा के वंशजों के हित में इन्हें समाप्त करने का प्रयास किया था। दाविद ने गिबियोन वासियों से पूछा, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इसकी भरपाई किस प्रकार करूँ कि आप लोग यहावे की मीरास के प्रति आशीर्वाद ही दें? यह सुन गिबियोन वासियों ने उत्तर दिया, शाऊल के परिवार से हमें ना तो स्वर्ण की अपेक्षा है, ना चांदी की, ना ही हमारी इच्छा यह है कि इसराइल के किसी भी व्यक्ति की हत्या करें। राजा ने उन्हें आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ तुम चाहो करने के लिए तैयार हूँ। यह सुन उन्होंने राजा से कहा, जिस व्यक्ति ने हमारा जीवन नाश कर दिया, जिसने हमें मिटाने की युक्ति की कि हम इसराइल देश की सीमा के भीतर देखे ना जाए, उसके वंशजों में से हमें 7 पुरुष सौंपे जाए कि हम उन्हें यहावे के चुने हुए शाऊल के गिबिया में ले जाकर यहावे के सामने प्राण दंड दें। राजा ने उनसे कहा, ऐसा ही होगा। मगर राजा ने यहावे के सामने अपनी प्रतिज्ञा के कारण शाऊल के पुत्र योनातन के पुत्र मेफीबोशेत को सुरक्षा प्रदान की। मगर राजा ने इसके लिए अय्या की पुत्री रिस्पा के अर्मोनी और मेफीबोशेत नामक 2 पुत्रों को, जो उसे शाऊल से पैदा हुए थे, और शाऊल की पुत्री मेरब के 5 पुत्रों को, जो उसे मेहोली बारजिल्लई के पुत्र आद्रियल से पैदा हुए थे, गिबियोन वासियों को सौंप दिया। इन्हें उन्होंने यहावे के सामने उस पर्वत पर प्राण दंड दिया। इससे उसी समय 7ों की मृत्यु हो गई। यह प्राण दंड कटनी के शुरुआती दिनों दिया गया था, जो कि कटनी के शुरुआत में। इस घटना के कारण अय्या की पुत्री रिस्पा ने चट्टान पर अपने लिए मोटे कपड़े का आसरा बना लिया और वह इसमें कटनी के शुरुआती दिनों से बारिश होने तक रही। वह ना तो दिन में पक्षियों को शवों के निकट आने देती थी, ना रात में जंगली पशुओं को। जब दाविद को अय्या की पुत्री शाऊल की उपपत्नी रिस्पा के इस काम की सूचना दी गई, तब दाविद ने शाऊल और योनातन की अस्थियां याबेश गिलाद के लोगों से ले ली। ये अस्थियां याबेश गिलाद वासियों ने बेतशान के नगर चौक से चुरा ली थी। फिलिस्तीनियों ने शाऊल की हत्या के बाद उसी दिन वहां टांग दिया था। दाविद ने शाऊल और उनके पुत्र योनातन की अस्थियां ले जाकर उनकी अस्थियों को साथ इकट्ठा कर दी, जो यहां टांगे गए थे। फिर उन्होंने बिन्यामीन के सेला नामक स्थान पर शाऊल और उनके पुत्र योनातन की अस्थियों को शाऊल के पिता कीश की कब्र में रख दिया। सभी कुछ राजा के आदेश के अनुसार किया गया। यह सब पूरा हो जाने पर परमेश्वर ने देश की दोहाई का उत्तर दिया। फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध। फिलिस्तीनियों और इसराइलियों के बीच दोबारा युद्ध छिड़ गया। दाविद अपनी सेना लेकर गए और उनसे युद्ध किया। युद्ध करते हुए दाविद थक गए। शत्रु सेना में इश्बी बेनोब नामक दानवों का एक वंशज था, जिसके भाले का तोल लगभग 3.5 किलो था। उसने एक नई तलवार धारण की हुई थी। उसने दाविद की हत्या करने की साजिश की, मगर जेरुया का पुत्र अभिशाई दाविद की सहायता के लिए आ गया। उसने फिलिस्तीनी पर हमला किया और उसका वध कर दिया। दाविद के सैनिकों ने उनसे शपथ ली कि वह अब से युद्ध भूमि में नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल वंश का दीप ही बुझ जाए। इसके बाद गोब नामक स्थान पर फिलिस्तीनियों से दोबारा युद्ध छिड़ गया। हुशाती शिबेकाई ने साफ को मार दिया। यह भी दानवों का वंशज था। एक बार फिर गोब नामक स्थान पर ही फिलिस्तीनियों से युद्ध छिड़ गया। बेथलेमवासी जारे ओरेगीम के पुत्र एलहानन ने गाथवासी गोलियत को मार गिराया। उसका भाला बुनकर की धरनी के समान विशाल था। उसके बाद गात में एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। वहां एक बहुत ही विशाल डीलडोल का आदमी था, जिसके हाथों और पांवों में छह उंगलियां थी, पूरी 24। वह भी दानवों के वंश का था। जब उसने इसराइल को चुनौती देने शुरू किए, दाविद के भाई सीमा के पुत्र योनातन ने उसको मार दिया। ये चारों गात नगर में दानवों का ही वंशज था। वे दाविद और उनके सेवकों द्वारा मार गिराए गए।